अयांश ने आरवी के लिए बाहें खोली कि तभी वो उसे जीप दिखाकर वहां से भाग गई। उसकी इस हरकत पर वो हंस दिया, पागल लड़की, और खुद को फिर उसने आईने में देखा। बिखरे बालों को उसने अपने हाथों से और बिखेर लिया। तभी अयांश का ध्यान अपनी गर्दन पर गया, जहां पर आरवी की लिपस्टिक का निशान था। वो मुस्कुराते उस जगह को सहलाता है और आरवी के बारे में सोचते दीवानगी भरे अंदाज में खुद से कहता है, क्या हो तुम, क्या बना दिया है तुमने मुझे। एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। जी चाहता है तुम बस सामने रहो। आंखें बेचैन, दिल तड़पता ही रहता है हर दफा तुम्हारे लिए। जब सामने आती हो नजरों को मेरी सुकून और मन को आराम मिल जाता है। जब बाहों में होती हो तुम मेरी, चाहता हूँ तुम्हें आज़ाद ना करूँ, बस लिपटा रहूँ तुमसे। जब निकल जाती हो तुम बाहों से, तरसता हूँ तुम्हें फिर अपने आगोश में लेने को। कभी नहीं था मैं ऐसा, पर अब ऐसा रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ। आई लव यू वाइफी। इस वक्त अयांश की आंखों में आरवी के प्रति जुनून, मोहब्बत, दीवानापन, सरूर सब सवार नजर आ रहा था। आंखों में तलब, दिल में तड़प, सब कुछ जो भी था सिर्फ आरवी के लिए था। तभी अयांश के चेहरे पर एटीट्यूड वाले भाव चले आए। तुमने मुझे जो दिया है वो कभी इमेजिनेशन में भी नहीं था मेरे। आई प्रॉमिस वाइफी, अयांश मेहरा तुम्हें सारे सुख, सारी खुशियां देता जिन पर तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। आज की रात आरवी के बारे में सोचते, तुम्हारे नाम। कैसे बचोगी तुम अपने डेविल, होठों पर डेविल मुस्कान लाते हुए, हस्बैंड से। आरवी नीचे पहुंची तो सब उसकी ओर देखने लगे और विनित अभी उसकी तरफ चले आए। विनित ने आरवी से पूछा, कैसा है अयांश का मूड। आरवी बोलती, इससे पहले ही अभी बोल पड़ा, एक बात बता, तुम मूड देखने गई थी मिस्टर मेहरा का या फिर मूड बनाने। विनित भी बोल पड़ा, हाँ बोलो आरवी, काफी टाइम लग गया ना अभिनव अयांश के मूड का जायका लेने में। अभी, विनित जी, जायका नहीं जायजा है ना आरवी। दोनों आरवी को जानबूझकर छेड़ रहे थे। आरवी मुस्कुरा दी, मैं तो अपना हुलिया ठीक करके आई हूँ, बालों पर अपना हाथ फेरते हुए, इनको पता कैसे चल गया, वो मन ही मन खुद से बोल रही थी। तभी विनित ने उसके सामने चुटकी बजाई, बोलो ना कहाँ खो गई। आरवी हाथों की उंगलियां आपस में उलझाते हुए, कहीं नहीं यहीं तो हूँ, बत्तीसी दिखाते हुए, मैं कहाँ खोऊंगी। अभी, फट से बोला, झूठ। विनित भी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ झूठ, बड़ा वाला झूठ। तभी आरवी तपाक से बोली, क्या झूठ, और अपनी बढ़ती सांसों को निरंतर करते हुए अयांश के बारे में सोचते हुए मन ही मन खुद से बड़बड़ाने लगी, ये कैसा असर है आपका, दूर चले आने पर भी असर खत्म ना होता। आरवी का चेहरा शर्म से, कहो या अयांश को, उसकी बेहिसाब चाहत को याद करते हुए लाल हो चुका था। तभी अभी उसके चेहरे को गौर से देखते बोला, आरवी तुम शर्मा क्यों रही हो, देखो तो विनित जी इसका चेहरा कैसे टमाटर की भांति लाल हो गया है। आरवी ने झट से अपने हाथ अपनी गालों पर रख लिए और थूक गटक लिया। विनित भी उसे गौर से देख, हाँ यार ऐसा लग रहा है कोई ताज़ा ताज़ा सा फूल खिला हो। दोनों की बातें सुन आरवी की नज़रें शर्म के मारे झुक गईं। शर्मा तो वो पहले ही रही थी, उसकी चोरी दोनों ने पकड़ जोली थी। कहते हैं ना, दोस्तों से कुछ नहीं छुपता, और अभी विनित से कुछ छुप जाए ऐसा तो होने से रहा। आरवी नीचे आने से पहले दूसरे रूम में अपना हुलिया ठीक करके आई थी, क्योंकि अयांश के साथ रोमांस करने के बाद उसकी जो हालत थी उसे देख कोई भी समझ सकता था वो क्या करके आई है। पर सब ठीक करके आने के बाद भी विनित अभी को पता चल गया था, या यूं कह लो उन दोनों ने अंदाज़ा लगा लिया था, और आरवी को शर्माते देखकर दोनों का अंदाज़ा जो पक्का हो गया था। शर्म के मारे आरवी की हालत पतली हो गई। वहीं वो दोनों मंद मंद हंसते आरवी को और छेड़ने लगे। अयांश वहां होता तो शायद ये हरकत दोनों करने की सोचते भी नहीं, डर के मारे। पर अब आरवी अकेली थी, मौका कैसे छोड़ देते, दोनों को मजा आ रहा था। वहीं आरवी आखिरकार चिढ़ गई और दोनों को धक्का देते दोनों के बीच से निकल गई। हटो, जाने दो मुझे। दोनों आरवी के पीछे पीछे चल दिए। विनित जी बताओ ना, अभी बोलो आरवी। आरवी दिनकर जी से, दादू देखो ना इन दोनों को, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। अभी ये गलत बात है आरवी। विनित और क्या, परेशान अयांश करता है, हम थोड़ी करते हैं। ये सुन आरवी दोनों को घूरने लगी जो मंद मंद हंस रहे थे। बाकी सब मुस्कुरा दिए क्योंकि ऐसा तो था नहीं किसी को कुछ समझ नहीं आता। अभी फिर बोला, अब तो बता दो यार। आरवी मुंह बनाते फिर दिनकर जी की ओर देखती है, दादू बोलो ना मुझे तंग ना करें। दिनकर जी विनित अभी से, क्यों परेशान कर रहे हो आप दोनों हमारी बच्ची को। विनित दिनकर जी की तरफ आते, दादू हम तो बस पूछ रहे हैं अयांश के बारे में। अभी भी बोल पड़ा, हाँ मिस्टर मेहरा का मूड कैसा है, बस यही पूछ रहे हैं। उनका मूड देखने गई थी ना ये ऊपर, तो बस वही जान रहे थे, पर ये तो बता ही नहीं रही। आरवी दोनों की ओर देखते हंसती, शराफत तो देखो कितने मासूम बन रहे हैं दोनों। दोनों एक साथ मुस्कुराते, थैंक यू। आरवी ने दोनों को घूरा, सब पता है मुझे। तभी सोनाक्षी जी बोली, आरवी कैसा है अब अयांश, गुस्से में तो नहीं है ना। ये सुन आरवी ने एक नज़र ऊपर की ओर देखा, ठीक है उनका मूड अच्छा है। कि विनित अभी एक साथ फिर बोले, होना ही था, अगर नहीं भी था मूड अच्छा तो कराई आरवी मूड अच्छा, राइट आरवी।
आरवी दोनों को फिर से घूरती है और वार्निंग देती है, मिस्टर मेहरा को बुलाएं, कि दोनों नामे सिर हिला देते हैं और होठों पर उंगली रख खड़े हो जाते हैं। आरवी के साथ साथ सभी हंसती है। अभी तो दोनों के चेहरे से मस्ती झलक रही थी, अयांश को बुलाने के नाम से दोनों के चेहरों से हवाइयां उड़ गईं। आरवी ने राहत की सांस ली, दोनों सबके सामने उसे छेड़कर उसकी हालत खराब कर रहे थे, पर दोनों अब शांत हो गए थे। तभी शांति जी अनिकेत जी की ओर देखते आरवी से बोली, आरवी वो अयांश अनिकेत से कब आगे कुछ बोलती? आरवी बोल पड़ी, सब होगा दादी माँ, अच्छे से मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, जो हम सब चाहते हैं वो सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा इंतजार, अभी उनका कॉफी पीने का मूड है, कॉफी पिला देते हैं फिर आगे जो करना है वो करेंगे हम, एक पिता को उसके बेटे से, एक बेटे को उसके पिता से मिलवाएंगे। इतना कह आरवी किचन की ओर जाने लगी कि राधे उससे बोला, आरवी भाभी हम भी आते हैं मदद के लिए। आरवी, नहीं राधे भैया, कॉफी ही तो बनानी है, हम बना लेंगे। वैसे भी मेरे विश्वामित्र को, हंसते हुए अपनी मेनका के हाथों अपने हाथ हिलाते हुए, कि कॉफी चाहिए सो हमें ही बनानी पड़ेगी। ये सुनकर सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आरवी सबकी ओर देखते किचन की ओर जाने लगी कि अनिकेत जी बोल पड़े, हमें भी पिला दो चाय कॉफी, अपनी राजकुमारी के हाथों से बनी हुई चाय कॉफी पिए काफी वक्त हो गया है, मिलेगा क्या हमें भी कुछ पीने को? चाय कॉफी? आरवी की आंखें हल्की नम हो गईं, उसने मुस्कुराते हामी भर दी, यस जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, हम अभी आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाते हैं डैड। कि अनिकेत जी चौंकते सोफे से उठ गए, क्या कहा तुमने? कॉफी लेकर आते हैं, चाय भी ला सकते हैं, वो बोल रही थी अनिकेत जी उसके पास चले आए, वो नहीं, वो तुमने मुझे, मैंने आपको डैड कहा? हाँ तुमने मुझे डैड कहा। अब डैड को डैड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वैसे आपको पता है हमें साफ साफ बोला गया है कि हम आपको अब अंकल ना कहें, ससुर जी भी नहीं, बोले हम आपको डैड कहें, बस डैड। और आपको पता है हमें ऐसा बोलने को किसने कहा है? आरवी बोल रही थी कि अनिकेत जी बोल पड़े, अंश ने?
आरवी ने हाँ में सिर हिलाया। अनिकेत जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, आंखें छलक उठी, वो दिनकर जी की ओर देखते हैं, देखा बाऊजी क्या कर रहा है अयांश, खुद को आकर मिल भी नहीं रहा मुझसे, ठीक से उसने मेरे साथ बात भी नहीं की, और आरवी से देखो डैड कहलवा रहा है, सुना ना आपने बाऊजी आरवी ने जो कहा? जानता है तड़प रहा हूं अपने अंश के लिए, मेरा बेटा मुझे डैड कहे, कान तरस रहे हैं मेरे ये सुनने के लिए, खुद डैड नहीं बोला अब तक मुझे, पता नहीं कब होगा ऐसा जब वो मुझे डैड कहेगा। कि आरवी ने उसका हाथ थाम लिया, अभी? सब आरवी की ओर देखते हैं, अनिकेत जी सवालिया लहजे में, अभी क्रमशः।